हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांत अनाही की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी नजरें तो सिर्फ विहा के चेहरे पर घूम रही थीं, जो बढ़ते पलों के साथ दुख से और भी ज्यादा लाल होता जा रहा था। अनाही ने भी इस बार विहा की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर उसके पास बैठते हुए बोली, बेटा अब कैसा लग रहा है तुम्हें? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर बोल रही थी कि। जैसे ही अनाही ने उसके पास जाकर उसका गाल छूना चाहा, विहा ने उसे भी धक्का देते हुए कहा, अनाही चली जाओ यहां से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब मुझे आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तो सबको कम नजर आ रहा था। अब मेरे पास झूठी हमदर्दी लेकर क्यों आ रहे हो? आप अपने वेदांत जी को संभालो दी, मैं खुद का ख्याल खुद रख लूंगी। ये बोलते बोलते विहा रोने लगी थी और उसका रोना धीरे धीरे चीखने में बदलने लगा। अनाही उसे हैरानी से देख रही थी। गिरने से पहले ही उसे रोहान ने पकड़ लिया था। अनाही ने फिर से रोहान के हाथ को खुद से दूर किया और फिर विहा की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, नहीं बेटा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। कोई तुमसे झूठी हमदर्दी नहीं दिखा रहा है। सब लोग सच में तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। विहा ने गुस्से में कहा, खबरदार जो कोई भी मेरे पास आया, फिर मुझे मत कहना कि मैं आप लोगों के साथ क्या कर रही हूँ। विहा लगातार अनाही को रोक रही थी, लेकिन अनाही के बढ़ते कदम नहीं रुक रहे थे। विहा ने पागलों की तरह इधर उधर देखा। वो बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रही थी और अचानक ही वहां रखे ग्लूकोज स्टैंड को उठाते हुए उसने अनाही की तरफ फेंक दिया, जो सीधा अनाही के माथे पर जाकर लगा था और अनाही के माथे से तुरंत ही खून बहने लगा। विहा ने फिर बेड पर रखे तकियों को उठाकर अनाही की तरफ फेंकते हुए कहा, चले जाओ सब लोग यहां से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वेदांत सूनी नजरों से विहा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे, शायद वो भी रोकर थक गया था। तो वहीं रोहान का गुस्सा विहा के लिए बढ़ता ही जा रहा था। उसने आगे बढ़कर गुस्से में विहा के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपने पति पत्नी का मैटर अपने पास रखो, मेरी मैडम जी को नुकसान मत पहुंचाओ। विहा हैरानी से रोहान को देख रही थी। वो इतनी दर्द और तकलीफ से गुजर रही थी, उसके बाद भी रोहान इसकी बजाय अपनी मैडम जी की परवाह कर रहा था, ऊपर से उस पर गुस्सा भी कर रहा था। विहा को किसी की भी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं थी। वेदांत धीमे कदमों से चलकर उसके पास आया और फिर रोहान का हाथ विहा की बाजू से हटाते हुए बोला, तुम जाओ यहां से और अनाही को ले जाओ, उसके सर से खून बह रहा है, डॉक्टर से बैंडेज लगवाओ और फिर घर चले जाओ। रोहान ने वेदांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और विहा को घूरते हुए फिर से अनाही के पास जाकर अगले ही पल उसे फर्श से बाहों में उठाते हुए बोला, मैडम जी जब किसी को आपकी फिक्र की जरूरत नहीं है तो फिर आप क्यों उसकी परवाह कर रही हैं? अनाही ने रोते हुए कहा, रोहान जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बच्ची है, उसे समझ नहीं है, वो जिस हाल से गुजर रही है आप नहीं समझ सकते हो। छोड़ो मुझे, मुझे उसके पास जाना है। अनाही रोहान की बाहों में झटपट आ रही थी, लेकिन फिर भी रोहान उसे नहीं छोड़ रहा था। वो उसे फिर से उसी वार्ड में ले गया और फिर गुस्से में एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, मैडम जी मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, यहाँ मैं आपकी बातें नहीं मानूंगा और आपको वही करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये बोलकर रोहान एक झटके से अनाही का चेहरा छोड़ गया और फिर कमरे में रखे फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर वापस अनाही के पास आया। वो थोड़ा सा कॉटन निकालकर अनाही के सर पर लगी चोट का खून पोंछ रहा था, तो वहीं अनाही आंखें बंद किए सिसक रही थी। रोहान ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी चोट पर मरहम लगाया और फिर वहां बैंडेज लगाते हुए बोला, मैं कभी भी आपकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा और इसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। इतना बोलकर रोहान अनाही के पास आया और फिर उसके आंसू पोंछकर उसके गाल को चूमते हुए बोला, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं। अनाही ने इस बार हैरानी से आंखें खोलकर रोहान के चेहरे को देखा और फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते हैं। रोहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ। इतना बोलकर उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। थोड़ी देर बाद रोहान का कॉल अनंत ने उठाया था, जो फिलहाल राविया को सुकून से अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। उन दोनों के ही बदन पर फिलहाल कपड़े नहीं थे और अनंत को रोहान के कॉल पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, अरे भाई साहब इतनी सुबह सुबह क्या काम है तुम्हें, सोने क्यों नहीं दे रहे हो? रोहान ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है आपको। विहा का मिसकैरेज हो गया है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं। आप पूरे परिवार को लेकर सिटी हॉस्पिटल आ जाना, ताकि सब लोग एक बार विहा से मिल लें, वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही है। इतना बोलकर रोहान ने अनंत की बात भी नहीं सुनी और कॉल कट कर दिया। अनाही ने आंखें बड़ी करके कहा, आप ये क्या कर रहे हैं रोहान जी? एक बार विहा को नॉर्मल तो होने देते, उसके बाद वो सबसे मिलती तो ज्यादा अच्छा होता। रोहान ने गुस्से में कहा, मैडम जी हर बार सबके बारे में सोचने से नहीं चलेगा, कभी कभी खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है सब लोग होंगे तो विहा को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि वो गलत कर रही है। अनाही ने इस बार चिढ़ते हुए कहा, वो कोई गलत नहीं कर रही है, गलत उसके साथ हुआ है, हमें उसे संभालना चाहिए, ना कि उस पर ब्लेम लगाना चाहिए कि उसके साथ जो हुआ उस पर वो कैसे रिएक्ट कर रही है। रोहान ने गहरी सांस भरते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम जी, पर मैंने बोल दिया तो बोल दिया, यहाँ पर आपकी जिद नहीं चलने वाली है। अनाही पहली बार रोहान की नजरों में अपने लिए गुस्सा देख रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत हैरानी हो रही थी और साथ में बुरा भी लग रहा था। वो चाहकर भी अब रोहान के सामने गुस्सा नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अब उसे सिर्फ रोना आ रहा था। वहीं अनंत की नींद जैसे उड़ चुकी थी। एक झटके से जैसे ही वो उठा, राव्या का सिर उसके बाजू से नीचे तकिए पर गिरा और राव्या ने झुंझलाते हुए कहा, क्या हो गया आपको मिस्टर निमानी? आप इतनी सुबह सुबह क्यों मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो? आराम से भी तो उठा सकते हो मुझे। इतना बोलकर उसने जैसे ही अपनी आंखें मसलकर अनंत को देखा, तो उसके चेहरे पर परेशानी देखकर उसका गुस्सा पल भर में छूमंतर हो गया और वो भी उठकर परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे? सब कुछ ठीक है ना? अनंत ने घबराते हुए राव्या को वो सब कुछ बता दिया जो थोड़ी देर पहले रोहान ने उसे बताया था, जिसे सुनकर राव्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों में भी तुरंत पानी आ गया। अनंत ने आगे बढ़कर जल्दी से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, हमें विहा के पास जाना है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नीचे सबको तैयार करता हूँ। राव्या तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो बेड पर वैसे की वैसी बैठी रह गई थी। अनंत जल्दी से उठा और अपने कपड़े पहनते हुए बोला, हमारे पास टाइम नहीं है राव्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो अच्छे बच्चे की तरह उठो और तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वो उसके पास आया और उसके माथे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम तक ले गया। उसने उसे शावर के नीचे खड़ा करते हुए कहा, प्लीज टाइम मत लगाना, जल्दी आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। इतना बोलकर अनंत बाथरूम से बाहर चला गया। राव्या शावर के नीचे पानी में भीगते हुए रो रही थी। उसे बहुत कम वक्त हुआ था इस परिवार का हिस्सा बने हुए, फिर भी विहा को वो अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी।
उसका दिल टूट रहा था ये सोच सोच कर ही कि फिलहाल विहा पर क्या गुजर रही होगी, वो मासूम कैसे खुद को संभाल रही होगी।